Olmak genelde yönlendirecekler bence yaşadılar ki. Çakışılır milletten bir yana tasma işi yürü verilmez. Üçeyden emin ol bu sütten sabitden bir yana bu da ve sayın bu rupa kalamayım dedi. Atı sıfırdan dedi. Değilse bu sütten dedi. Ne bırakın ötü yanım. Sıra dur gidip daha dersi varsa dedi. Olur bak dedi. Öyle iyi kuş. Asıl şu anda adiyayı diyor ta. उसमें हमने सुना कि अंत में कि किस तरह से इस तीन गुणों से मुक्त हुआ जा सकता है क्या था उपाय वामच योग अव्यभिचार है ना भक्ति योग है ना सेवते जो भक्ति योग से मेरी सेवा करता है सगुणान समचित चेतान वो तीन गुणों से पर हो जाता है ब्रह्म भूया कल्पते बाद में कहा ब्राह्मणों ही प्रतिष्ठा ब्रह्म मुझसे ही प्रकट होता है ऐसा भगवान ने बताया मिस तीन गुणों से पर होने की बात बताई थी भगवान ने अंत में तो ये तीन गुणों से पर होकर ब्रह्म में स्थिर होने के लिए उससे तीन गुणों से विरक्त होना पड़ेगा तो ये 15वां अध्याय जो है वो इसी के कंटिन्यूएशन में है किस तरह से हमें इस तीन गुणों से प्रभाव से मुक्त होना चाहिए और इसके इससे हमें विरक्ति प्राप्त करनी चाहिए इस चीज़ को समझाने के लिए भगवान बार बार जैसे आप पिछले अध्यायों में भी भगवान बार बार इस चीज़ को बताते थे जैसे 8वें अध्याय में भगवान ने बताया था किस तरह से भक्त को विरक्त रहना चाहिए व्यक्ति को विरक्त रहना चाहिए भौतिक संसार हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम इच्छाओं के दास हो जाते हैं एक ही प्रॉब्लम है बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं इच्छा ही हमारी प्रॉब्लम है वो तो ये भगवान एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ये अध्याय बहुत बड़ा उत्तम अध्याय है पुरुषोत्तम भगवान का पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय बड़ा फेमस है लोग पढ़ते हैं इसको बार बार पुरुषोत्तम योग अभी पुरुषोत्तम मास आएगा तो पुरुषोत्तम मास में ऐसा विवरण है कि रोज एक अध्याय ये 15वां अध्याय रोज पूरा पढ़ना चाहिए भक्तों को एज ए रूल व्रत के रूप में 20 श्लोक है ज़्यादा नहीं है सो इट्स वेरी पावरफुल चैप्टर तो भगवान इसमें अश्वत्थ वृक्ष का शुरुआत में एग्जाम्पल देते हैं और उसके बाद फिर अपना भक्ति योग जो पुरुषोत्तम योग है वो आगे चर्चा करते सिखाते हैं तो हम इसका डिवीज़न करते हैं पहले चैप्टर का 20 श्लोक है इसमें से हम इसके डिवाइड करते हैं श्लोकों को तो पहले 5 श्लोक है वो भौतिक संसार से विरक्ति के लिए है जो वृक्ष की बात है अपना अश्वत्थ वृक्ष ये भौतिक संसार से विरक्ति प्रदर्शित करने के लिए भगवान ने ये एग्जाम्पल यूज़ किया है 1-5 फिर 6-11 जो है वो है ट्रांसमाइग्रेशन है वो स्थानांतरित जो होते हैं उसके विषय में बताया गया है किस तरह से जीव इस जगत से उस जगत तक जा सकता है फिर 12-15 है उसमें कृष्ण हमारे पालन करता है उनका स्थान पालनकर्ता के रूप में उनका स्थान कृष्णा पोजिशन एज द मेंटेनर फिर 3 श्लोक है 16-18 उसको त्री श्लोक की गीता बोलते हैं त्री श्लोक की गीता जैसे 3 श्लोक है जिसमें वेद वेदांत का पूरा सार दिया हुआ है। तो जैसे चतुर्श्लोक की गीता उसमें पहले था ना 12 चैप्टर में, उस तरह के ये कि 3 श्लोक की गीता है ये, इसमें 3 श्लोक में सारे वेदों का सार बताया है। और लास्ट के जो 2 श्लोक है उसमें कृष्ण को जान लिया तो सब जान लिया, नोइंग कृष्णा नोज एवरीथिंग। Knowing Krishna means knowing everything. So, हम ये उदाहरण भगवान पहले श्लोक में प्रस्तुत करते हैं, वो पढ़िए।
भगवान ने कहा, कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों का ज्ञाता है।
तो ये बनियन ट्री जो है इसके विषय में कहा गया है कि ऊर्ध्वम मूल अधः शाखा, ऐसा वृक्ष कभी होता नहीं, इसके मूल आकार ऊपर हो और शाखाएं नीचे की ओर हो। भगवान, पता नहीं भगवान को क्यों ऐसा सूझा, लेकिन भगवान ने जो भी बताया वो यही एक तरीका है जिसको भौतिक संसार को प्रस्तुत करने का ये बहुत ही अप्रोप्रिएट तरीका है। भगवान ने उसको बताया, ये वृक्ष का जो वर्णन किया भगवान ने रैंडमली, उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया, ही इज़ अ सुप्रीम लॉर्ड, ही नोज एवरीथिंग। तो उन्होंने ये वृक्ष का उदाहरण प्रस्तुत करके संसार की वास्तविकता को दिखाना चाहते हैं वो। तो अभी ऊर्ध्वमूल अधः शाखा जैसा प्रभुपाद बताते कि ऐसा कोई पेड़ होता ही नहीं कभी, लेकिन ऐसा पेड़ कहाँ पर मिल सकता है आपको? हाँ, किसी समुंदर के पास, किसी नदी के पास, सरोवर के पास, वहाँ पर आपको ये दिख सकता है ऐसा, राइट? जिसके ब्रांचेस नीचे ऊपर की ओर हो, ब्रांचेस नीचे की ओर और मूल ऊपर की ओर हो, ऐसा उस समय वहाँ पर दिख सकता है। तो अभी जो समुंदर में दिख रहा है इसका, ये नदी में जो दिख रहा है इसका अर्थ क्या होता है कि उसका कोई वास्तविक स्वरूप होना चाहिए। रिफ्लेक्शन का अर्थ होता है, रिफ्लेक्शन अकेला तो होता नहीं कभी, है ना, वो तो आपको भ्रमित करने वाली बात है, क्या रिफ्लेक्शन ही है और आगे उसका कुछ है नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो रिफ्लेक्शन मीन्स देयर इज समथिंग रियल। तो जब भगवान बताते हैं इस वृक्ष के विषय में, इसका अर्थ होता है कि इससे विपरीत आध्यात्मिक विश्व भी है, कंप्लीटली अपोजिट, पूरा विपरीत। ये रिफ्लेक्शन, यहाँ का मूल ब्रह्मलोक से है इस वृक्ष का, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मांड की शुरुआत होती है और उसकी शाखाएँ नीचे की ओर विस्तृत है। इसको अश्वस्थ वृक्ष कहा गया है। तो अश्वस्थ क्यों कहा गया है, हमारे आचार्यों ने विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बताते हैं, अश्व का अर्थ होता है जो रहता नहीं, स्थ का स्थिर, अश्व का अर्थ कल, जो कल नहीं रहता अर्थात टेम्पररी है, मीन्स आज है लेकिन वो कल वो नहीं रहेगा, वो नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए उसको अस्वस्थ बोला गया है, अस्वस्थ वृक्ष। और कुछ आचार्य ऐसा भी कहते हैं कि अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, अश्व कभी घोड़ा स्थिर नहीं रह सकता, घोड़े का एक लक्षण है कि वो स्थिर नहीं रह सकता, खड़ा एक जगह खड़ा नहीं रह सकता, वो कुछ ना कुछ चलता रहेगा उसका। तो जिस तरह घोड़ा स्थिर नहीं रह सकता, इस तरह से ये भौतिक संसार जो है वो स्थिर नहीं रह सकता, वो नष्ट होता रहता है, उसका प्रलय होता रहता है, भूत्वा प्रलयते, उसका विनाश होता है, वो टेम्पररी है। तो इस बात को इस तरह से समझना चाहिए कि ये जैसे रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपको जल में दिखाई देता है, उसी तरह से मनुष्य की जो इच्छा है उसके आधार पर ये वृक्ष खड़ा रहता है। जल है तो रिफ्लेक्शन दिखाई दिया, तो उस वृक्ष का आधार जल है तभी तो दिखाई दिया, है ना। इस तरह से हमारी जो भौतिक इच्छाएं हैं वो इस अस्वस्थ वृक्ष संसार रूपी वृक्ष है उसका आधार है। हमारी इच्छाओं के परिणाम स्वरूप हम सदसद योनि जन्मसु, है ना। क्या था वो श्लोक, कारणम गुणसंगस्य सदसद योनि जन्मसु, प्रकृतिस्थो भी पुरुष प्रकृतिस्थो भी भुंक्ते प्रकृति जानगुणान। वो भोग करने की जो इच्छा है भुंक्ते प्रकृति जानगुणान, जो भोग करने की इच्छा के कारण वो इतनी डिप रूटेड है हमारे चेतना में कि हम स्वाभाविक रूप से भोग करने का वृत्ति रखते हैं। हम चाहते हैं भगवान से स्वतंत्र होकर के, दासत्व की भावना हमें नहीं है, इसलिए ये संसार रूपी वृक्ष का निर्माण होता है, क्रिएशन। सो इसका वर्णन बहुत सुंदर प्रभुपाद जी ने किया है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसको समझना, वृक्ष को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि आगे आता है कि वृक्ष की शाखाएं नीचे भी है, ऊपर की ओर भी है और नीचे की ओर भी है, ऐसे शाखाएं, और उसके जो पत्ते हैं वो वैदिक हिम्स है। सो कोई भी वृक्ष तभी सुंदर दिखता है जब उसके पत्ते होते हैं, जब तक वृक्ष के पत्ते नहीं है तो इतना नंगा वृक्ष कैसा लगेगा आपको, उसका कोई उसको और देखता भी नहीं कोई, है ना। अगर हरे भरे पत्ते हैं तो पक्षियाँ भी बैठते हैं, लोग भी उसके शेड उसका शेड लेने के लिए आते हैं, बंदर भी बैठते हैं उस पर, लेकिन नंगे वृक्ष के पास कोई नहीं जाएगा, है ना। उस तरह से संसार का आकर्षण है वैदिक हिम्स, मीन्स जिससे लोग आकर्षित रहते हैं अलग अलग प्रकार की इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, लेकिन अगर इसी तरह से उसके जो फल है वो सुख, वो आगे नेक्स्ट श्लोक में है। लेकिन श्री प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं, पढ़िए, द एंटेंगलमेंट ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज कम्पोज हियर टू बी अ बनियन ट्री, हियर टू एज अ बनियन ट्री, बताइए पढ़िए।
The entanglement of this material world is compared here to a banyan tree. For one who is engaged in fruitive activities, there is no end to the banyan tree. He wanders from one branch to another, to another, to another. The tree of this material world has no end. And for one who is attached to this tree, there is no possibility of liberation. The Vedic hymns meant for elevating oneself are called the leaves of this tree. This tree's roots grow upward because they begin from where Brahma is located, the topmost planet of this universe. If one can understand this indestructible tree of illusion, then one can get out of it. This process of extrication should be understood. In the previous chapter, it has been explained that there are many processes by which to get out of the material entanglement. And up to the 13th chapter, we have seen that devotional service to the Supreme Lord is the best way. Now, the basic principle of devotional service is detachment from material activities and attachment to the transcendental service of the Lord. The process of breaking attachment to the material world is discussed in the beginning of this chapter.
Yes. So here, if we see the whole purport, just to shorten, the whole purport, Prabhupada is giving the description of the whole tree. You know, in the next slokas also, what is, you know, found in this tree. Like, for example, I'm just giving you example, the summary. The reflection, the medium of the reflection is desire. Yeah. Then the roots, the basic roots are material substance. The secondary roots are, you know, spread all the way, up and down. Generally, the real seed of this tree is found in spiritual world. The branches are upper and lower planets. जो अपर प्लैनेट है लोअर प्लैनेट से वो उसकी शाखाएँ हैं 14 भुवन जो है वो उसकी अलग अलग शाखाएँ हैं वैदिक हिम्स जो है उसके पत्ते हैं डिस्क्रिप्शन इस तरह से तात्पर्य उसके जो ट्वीक्स है वो इंद्रिय के विषय है जिससे आकर्षित होते हैं लोग और उसको भोग करते करते एक शाखा से दूसरे शाखा तीसरे शाखा इस तरह से घूमते हैं ट्वीक्स उसके जो टिप्स ऑफ द ब्रांचिस है शाखाओं की जो टिप्स जो आगे का हिस्सा है वो है इंद्रियां डिस्क्रिप्शन इज लाइक दिस द फ्रूट्स आर धर्म अर्थ काम मोक्ष उस वृक्ष के जो फल है ये चार फल है इसको भोग करने के लिए लोग इधर उधर घूमते धर्म अर्थ काम मोक्ष एंड द नरिशमेंट इसका नरिशमेंट कैसे होता है इस वृक्ष का तीन गुणों के माध्यम से अगर ये तीन गुण नरिशमेंट सप्लाई बंद हो जाए तो वृक्ष अपने आप बंद हो अटक गया तो उसका नरिशमेंट होता है तीन गुण के माध्यम से तो इस तरह से लिविंग एंटिटी जो है वो एक शाखा से दूसरी शाखा इस फल को चखने के लिए घूमते फिरते उसका ना ऊपर ना उसका अंत ऊपर की ओर मिल सकता है ना नीचे की ओर मिल सकता है और वो भोग की इच्छा से सारे वृक्ष की सभी ब्रांच में केवल असहाय होके घूमता फिर रहा है सो इस तरह से प्रभुपाद एक जगह ऐसा बताया कि कोई भी चीज़ अपसाइड डाउन रहती है अपसाइड डाउन माथा नीचे पैर ऊपर वो ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं होती अपसाइड डाउन इज़ नेवर कंफर्टेबल तो इसलिए यहाँ पर इसको दुखालय इसलिए कहा गया है संसार को यहाँ पर कष्ट इसलिए होता है क्योंकि हम हमारी ओरिजिनल पोजिशन से रिफ्लेक्टेड पोजिशन में घुस गए हमारा काम है दास बनना हम बन बैठे स्वामी हमारा काम है भगवान को संतुष्ट करना हम प्रयास करें अपने आप को संतुष्ट करने के लिए हमारा कार्य है भोक्ता के बदले भोग्या हम भगवान के द्वारा भोगे जाना चाहिए इसके बदले हम प्रयास करते हैं कि हम प्रकृति का एक्सप्लोइटेशन करें हम प्रकृति को भोग करें ये हमारा उद्देश्य तो ये जितने भी ऑपोजिट कार्य है रिफ्लेक्टेड कार्य जैसे हमारा इच्छा है कि हम हमारा उद्देश्य है कि हम भगवान के दास के रूप में अपना महत्व समझें लेकिन हम उसके विपरीत फॉल्स ईगो में अपना महत्व से देखते हैं कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ ऐसे करता तो ये सारी रिफ्लेक्टेड जो बात हम सुन रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल भगवान की रासलीला सर्वोत्तम है लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हैं लोग सोचते हैं कि मैं वो ही कार्य करूँगा इधर रिफ्लेक्टेड कार्य सेम थिंग तो वो निकृष्ट हो जाता तो एवरीथिंग रिफ्लेक्टेड इज गॉन द अदर वे सो हमारा मस्तक नीचे है और पांव ऊपर है तभी इस सिचुएशन में भला कोई कैसे रह सकता है इट इज डिफिकल्ट सिचुएशन सो दिस इज प्रॉपर से इट इज अपसाइड डाउन सिचुएशन सो देयरफॉर वन नीड टू understand this vriksha, this tree, banyan tree, and cut it, cut off it. So, text number 2 padhiye.
Is vriksha ki shakhaye upar tatha niche phaili hui hai. Aur prakruti ke teen gunon dwara poshit hai. Iski tahaniya indriya vishay hai. Is vriksha ki jade niche ki aur bhi hai, aur bhi jati hai. जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है
किसके द्वारा बंधी है सकाम कर्म आगे का तो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, लेकिन सकाम कर्मों के माध्यम से ये बंधा हुआ है अपने को। प्रभुपाद लिखते हैं कि दिस प्लेनेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कंसिडर द फील्ड ऑफ एक्टिविटी, इंडिकेट्स दैट कर्म इज एक्यूमुलेटेड ओनली ऑन ह्यूमन लाइफ। प्रभुपाद ये जो बताते हैं मीन्स वाई कृष्णा अपीयर्स ऑन अवर सी प्लेनेट, दिस इज वन ऑफ द रीजंस। ये भूलोक वो स्थान है, हमारा ये जो पृथ्वी लोक है ये वो स्थान है जहाँ पर यहाँ से बहुत सारे पास्टर बाय होते हैं, ऊपर जाना है तो भी इधर से जाना पड़ेगा, नीचे जाना है तो भी इधर से जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैक्सिमम पीपल आपको मिलेंगे प्रीच करने के लिए। सो इसलिए कृष्ण इधर ही प्रकट होते हैं, आसिया प्रपंच जीवेर कारण लीला कोयलो सुविस्तार, जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान लीला प्रस्तुत करते हैं। क्यों? यहाँ पर अधिक से अधिक जीव, और कर्म जनरेशन केवल मनुष्य योनि में हो सकता है, देवताओं बाकी सारी जो 8 मिलियन स्पीसीज है, 80 लाख जो योनियाँ, वो रिजल्ट है, फल उसका, उसमें कर्म जनरेशन सिस्टम नहीं है। दे कैन नॉट क्रिएट कर्मस, दे कैन ओनली फेस द रिएक्शंस। जैसे अच्छे कर्म किए किसने तो स्वर्ग लोक में जाएगा, लेकिन वहाँ पर जाकर के वहाँ पर वो पाप पुण्य का झंझट नहीं होगा, उसका जैसे ख़त्म हुआ मेरिट जो इकट्ठा किया है बस, तो ख़त्म हो गया। अगर वो मेरिट फास्ट एग्जॉस्ट करता है तो तुरंत आएगा, और स्लो एग्जॉस्ट करता है तो धीरे धीरे आएगा। यू नो दिस इज द सिचुएशन। सेम वे अगर कोई व्यक्ति बहुत नरक में गया है, बहुत ज़्यादा पाप किया है, तो अगर उसको उसने अगर गलती से भी कोई अच्छा काम कर दिया तो उसके जो कर्म है वो डिस्काउंट मिल जाएगा उसको। सो उसका मनुष्य जन्म में आने का जो प्रोसेस है वो स्पीड अप हो जाएगा। सो सकाम कर्म में फंसा हुआ है वो व्यक्ति, और वेद जो है उसको ऊपर लाने का काम कर रहे हैं। एक तीसरा स्टॉक पढ़िए, व्हाट डज इट से,
दानव बोलते हैं कि ये जो चालक स्पीसीज है तो दानव जो है असुर उसी में आ जाते हैं।
हाँ हाँ, नो नो एक्सक्यूज, सब उसमें आने, ब्रह्मा से लेकर तक
4 लाख जो स्पीसीज देवता,
नहीं नहीं 4 लाख नहीं, देवताओं की यूनि अलग है। अच्छा, 4 लाख 80 लाख में देवताओं की यूनि आती है।
ओके, और 4 लाख में से मनुष्य जो
80 लाख में आते हैं?
नहीं, 4 लाख में आती है, 4 लाख मनुष्य में दे आर एलिवेटेड ह्यूमन, दे आर ब्रह्मास एंड देवदास, 80 लाख में
मनुष्य से लेकर जो ब्रह्मा,
यस
वो 4 लाख, और जो दाल असुर ये
दे आर ऑल इन दैट
80 लाख
के अंदर, नहीं 4 लाख,
4 लाख के अंदर ही।
यू कैन डिवाइड 4 लाख ऑफ ह्यूमन इन 3 मोड्स ऑफ नेचर, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी, ऐसे तो असुरी दे आर राक्षस वगैरह सब तमोगुण में आते हैं, और ब्रह्मा देवता ये सब उपद्रव लोग सत्वगुणी में आते हैं, रजोगुणी में आते हैं ऐसे।
इंद्र वगैरह जो भी स्वर्ग लोग कर्म करते तो उनको रिएक्शंस नहीं मिलते,
कर्मणा गति गहन है। जैसे ऐसा नहीं है कि केवल पृथ्वी लोक में राक्षस लोग नहीं रहते, ऐसा नहीं कह सकते हम। इस लोक में भी बहुत सारे असुर लोग रहते हैं, भूर लोक में भी, तो इसलिए बाकी के जो प्लैनेट्स है उसमें फल भुगतने का सिस्टम है, जनरेशन का सिस्टम नहीं है। तो इसी तरह से अगर कोई जैसे हिरण्यकशिपु तो पृथ्वी लोक पे ही था, हालांकि था तो असुर, इवन रावण था वो तो मानव बक्सी राक्षस था, मनुष्य को खा जाए ऐसा राक्षस था, लेकिन वो तो रहता था पृथ्वी लोक पे, लंका में। तो इट इज़ नॉट दैट कि वो लोग एक पर्टिकुलर जगह पे रह सकते, दे कैन लिव एनी वेयर, But until they are in Bhur Lok, their karma generations are there. Otherwise, after death, they will be promoted or degraded to lower or higher planetary system. जैसे कई उदाहरण, जैसे महाराज नृक, तो उनको स्वर्ग भेजा गया, लेकिन उनका कर्म जनरेशन इस लोक में हुआ था, बाद में उनको स्वर्ग भेजा गया। और कुछ ऐसे राजा भी थे, जैसे राम भगवान रामचंद्र के पिता महाराज दशरथ, तो महाराज दशरथ उस प्रकार के राजा थे कि जो देवताओं के लोक में जाकर देवताओं को हेल्प करके आ जाते थे वापिस, वापिस भूर लोक में आ जाते थे, उस प्रकार के राजा थे। जैसे इंद्र का बेटा अर्जुन, ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है, तो 5000 साल पहले का ही है इंद्र, तो ये अर्जुन, तो वो भी तो जाके स्वर्ग में जाके वापिस आ गया था। भीष्मदेव ही कुड ऑल्सो ट्रैवल। सो दे आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, दे कैन डू सर्टन थिंग्स, बट कर्म जनरेशन इज ओनली पॉसिबल इन भूलोक।
About Ravan, you said that is Rakshas, लेकिन कैसे उसको महापंडित भी कहा गया, how far it is correct?
उसके 10 जो ग्रीवा थी, 10 सिर थे, उसमें जो 9 थे वो सब अच्छे गुण वाले थे। एक मस्तक था वो पंडित था, दूसरा था वो सदाचारी था, ऐसे बाकी के जो 9 थे they are very nice, all good qualities। लेकिन जो उसका मूल मस्तक था, मेन मस्तक जो सबसे प्रथम था, वो राक्षसी तमोगुणी था और उसमें काम प्रचुर था। तो उस मस्तक के कारण रावण को राम के हाथ मरना पड़ा। बाकी के जो 9 मस्तक है उसके कारण रावण को प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन सबको उसका परिणाम भुगतना पड़ा। अभी रावण के जो अच्छी क्वालिटीज के वर्णन करते हैं ना लोग, ही वॉज लाइक दिस, ही वॉज सो नाइस, ही वॉज दिस दैट दिस दैट, यू नो, ही वॉज सो एक्सपर्ट इन प्रोनाउंसिंग श्लोकस, उसके जैसा कोई श्लोक बोलने वाला नहीं था उस समय, ही वॉज सो नाइस इन दैट। सो ये सारे लक्षण उसके उसके कारण थे, जो बाकी के 10 ग्रीवा थे उसके कारण, 9 ग्रीवा थे उसके कारण थे। तो आदमी तो एक ही है, लेकिन उसके 10 प्रकार की बुद्धि उसके अंदर निवास करती थी, जिसमें से कुछ ज़्यादातर अच्छी क्वालिटीज थी और ये राक्षस था। सो दैट वॉज द रीज़न दिस होल साइंस इज गिवन इन सम पुराणस अबाउट रावणा। सो कर्म जनरेशन भूर लोक में होता है। अभी 3 और 4 में भगवान इसको थोड़ा इसी वृक्ष के विषय में बताते हैं। आगे पढ़िए।
3 और 4। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादि काल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है।
तो यहाँ पर लिखा है कि इस वृक्ष को भौतिक समाज में, संसार में अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि समझ लो कि आप इस घर के भीतर बैठे हो, तो आप ये घर कैसा है वो आप घर में बैठे कैसे समझ सकता है। घर के बाहर जाओगे तब आप इसको समझ सको ये घर दिखने में कैसा है, लेकिन हम घर के भीतर फंसे हुए लोग हैं, इस वृक्ष के अंदर फंसे हुए लोग हैं, तो हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि ये कैसा वृक्ष है। लेकिन जो मुक्त व्यक्ति है वो समझ सकता है कि ये वृक्ष कैसा है। नो वन कैन अंडरस्टैंड वेयर इट एंड्स, उसका अंत कहाँ है, उसकी शुरुआत कहाँ है, उसका फाउंडेशन वगैरह सब कुछ नहीं पता लगा सकता, लेकिन इस फ्रूट्स को क्या रखने का आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, या कुछ बोलते हैं वास्तविक है, या कुछ बोलते हैं कि ये सनातन है। नहीं, जो लोग भी बोलते हैं उसके विषय में ये हमारी सारी अज्ञानता के कारण हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन भगवान भगवद गीता में स्पष्ट बोलते हैं कि इसको कौन सी कुलाड़ी से, विरक्त विरक्त डिटैचमेंट की कुलाड़ी से उसको काट फेंकना चाहिए, उसको काट देना ही उत्तम है। वन मस्ट कट डाउन इट, और सुविरूढ़ मूल है, सुविरूढ़ मूल का उसका रूट बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, क्योंकि जैसे हमने बताया ना हमने शुरुआत में कि वो बहुत डीप रूटेड है हमारे हृदय में, उसको निकालना इतना आसान नहीं है ना। एक भक्त मुझे कुछ समय पहले कह रहे थे, प्रभु जी मेरा विकास क्यों नहीं हो रहा, मेरा आध्यात्मिक विकास क्यों नहीं हो रहा। मैंने कहा भैया तुम्हारा मूल तो देखो कितने कितना कहाँ तक फैला हुआ है, तुम्हारा जो रूट है मूल है वो कई कई जन्मों से कहाँ कहाँ फैला हुआ मूल है तुम्हारा। अभी आप उसको बोलते हो कि एक ही दिन में उसको उठा के फेंक दो, कैसे होगा ये? आपको प्रोसेस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको उसको वैराग्य से काटना पड़ेगा। वैराग्य का अर्थ क्या है? भोग नहीं करना। लेकिन ये ऐसे संभव नहीं है, समझ लो कि आपको कोई जॉब में पसंद नहीं है, कोई जॉब पसंद नहीं है आपको, तो क्या आप जॉब से रिज़ाइन कर दो? दैट्स इनफ, यू मस्ट हैव सम अदर पोस्ट। यू डोंट लाइक वन पोस्ट सो यू रिज़ाइन, बट रिजाइनिंग इज नॉट द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन इज टू गेट अनदर यू नो प्रमोशन और अदर जॉब। सो पीपल व्हाट मायावादी दे थिंक, रिजाइन द जॉब। मायावादी लोग क्या सोचते हैं? छोड़ दो, संसार मिथ्या है तो सब छोड़ दो। लेकिन छोड़ने के बाद जीव रह नहीं सकता, भौतिक आकर्षण कम होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक आकर्षण होना है तभी भौतिक आकर्षण कम होगा। वी कैन नॉट स्टे विदाउट प्रॉपर अट्रैक्शन, देर मस्ट बी समथिंग विच यू नो वी आर अटैच विथ। डिटैचमेंट इज ओनली देन पॉसिबल। और ये जो कुल्हाड़ी है उसको उसका धार जो है उसका वो तभी तीक्ष्ण होगा। हम सब के पास कुल्हाड़ी तो हो सकती है शायद, लेकिन हमारी कुल्हाड़ी इतनी मजबूत नहीं है कि हम उसको काट के फेंक सकें। इस वृक्ष को, ये संसार रूपी वृक्ष जो है उसको काटने के लिए हमारी जो कुल्हाड़ी है उसको तेज बनानी पड़ती है, और तेज हो सकता है साधु संगत के माध्यम से, भक्तों की कृपा से इसको हम तेज बना सकते हैं, भक्तों की संगति से और विवेक बुद्धि से, कि भगवान की शरण लेना या माया की शरण लेना, ये विवेक बुद्धि इसका उपयोग करना चाहिए। जनरली हमारे भक्त भक्ति में जुड़ने के बाद भी कमज़ोर इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो लोग भक्ति में जुड़ने के बाद बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो विवेक बुद्धि यूज़ नहीं करते कि उचित क्या है, गलत क्या है, भगवान क्या कहते हैं, प्रभुपाद क्या कहते हैं, गुरु क्या कहते हैं, हमारा क्या करते हुए, इस पर विचार नहीं करते, और उनका विषय भोग के प्रति प्रबल आ सकती है। मेडिसिन अगर हम ढंग से नहीं लेते और साधु संगत का लाभ नहीं उठाते, श्रवणम कीर्तनम नहीं करते, तो हमें तीन गुणों का नरिशमेंट मिलना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे नरिशमेंट तीन गुणों का मिलता रहेगा वैसे वैसे वृक्ष का फैलाव बढ़ता रहेगा। ये वृक्ष टूटेगा नहीं, ये तो हमें बंद कर रखेगा, और फिर हम रोते रहेंगे मेरा विकास नहीं हो रहा है, मेरा आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है, मेरे भक्ति में आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूँ, ये प्रॉब्लम है। अभी हम इसके जिम्मेदार हम खुद ही है। तो इसलिए श्री प्रभुपाद लिखते हैं, इट इज़ नाउ क्लियरली स्टेटेड दैट द रियल फॉर्म ऑफ दिस बनियन ट्री कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। पढ़िए,
अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अशस्त्र वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को भी भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है। जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि उस यह कितनी दूरी तक फैला है, न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि, इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक्षा विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अनंत भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है, जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस क्षण प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतएव प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान पर का वर्णन किया जाता है जहाँ जाकर मनुष्य इस क्षण प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल है जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकलती है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनके शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण हैं। इसकी व्याख्या पहले स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अस्वस्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है।
या तो भगवान की शरण ग्रहण करने के लिए स्पष्ट आदेश दिया है यहाँ पर प्रभुपाद ने। अगर आप शरण ग्रहण करते हो और ज्ञानी पुरुष या भक्त उसका संग करते हो, तभी आप इस वृक्ष को काटने में सफल हो सकते हो, नहीं तो ये सफल नहीं हो सकता। अन्यथा कितने भी प्रयास किए जाए, ज्ञानी है, योगी है, कर्मी है, वो इस वृक्ष से बाहर नहीं निकल सकता है। उसका लंबा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो ये वृक्ष में एक रूप से देखा जाए तो सारे व्यक्ति आगे भगवान इसी श्लोक इसी अध्याय में आगे बताते हैं कि जीव जो है वो कठिनाइयों का सामना करता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है। तो इसलिए शरणागति के माध्यम से भगवान आगे भी बताते इसी विषय को, शरणागति के माध्यम से ही हम भगवान को ये शरणागत होकर के इस वृक्ष को काट सकते हैं। भाई वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें फिर हम शरणागति के विषय में बात करेंगे। वो आप पांचवा श्लोक पढ़िए, निर्माण मोहाय।
जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त है और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं।
यस, निर्माण मोह जित संग दोष। तो मोह से मुक्त होना, निर्माण मोह, निर्माण मोह जित संग दोष, अध्यात्म नित्य अभिनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगैर गच्छन् मूढ़ा पदम अभियन्तत्। सो निर्माण मोह, शरणागति में सबसे पहला आता है दैन्य, छह अंग है शरणागति के। भक्तों को ये समझना चाहिए कि छह अंग क्या होता है। शरणागति सीखना पड़ता है, शरणागति आता नहीं हमें, कैसे शरणागति, कैसे शरणागति लेना वो नहीं आता। भगवान कहते हैं मामे कम शरण में, लेकिन शरण कैसे लेनी चाहिए, हे कृष्ण मैं आपकी शरण में, इतना बोलने से तो कुछ नहीं होता है। शरण लेना का अर्थ होता है छह चीज़ों का पालन करना होता है। जो छह चीज उसमें पहला है दैन्य। दैन्य का अर्थ होता है अपने आप को भगवान के सामने दीनता के भाव से प्रस्तुत करना। दीन है भगवान के सामने, उनको अपने आप को दीन प्रस्तुत करना कि मुझ में कोई गुण नहीं है, मैं फंसा पड़ा हूँ, मैंने गलत बहुत सारे गलत काम किए हैं। तो इस प्रकार की जो दीन भावना है ना, ह्यूमिलिटी, विनम्रता, तो उस प्रकार की दीन भावना उनको अनुकूल करने का प्रयास करना चाहिए। जनरली क्या होता है कि जो भौतिकवादी लोग होते हैं, हमारी या हमारी अपनी बात करें, तो हम लोग थोड़ा भी अगर एन्जॉयमेंट स्पिरिट है ना, हमें एन्जॉय करने की, वो व्यक्ति दीन नहीं बन सकता। दीन व्यक्ति वो हो सकता है कि जिसके पास जो एन्जॉय करने का उसका वृत्ति नहीं है, वो दीन बन सकता है। हम लोग अगर एन्जॉयमेंट वाले मूड में है कि हमें एन्जॉय करनी है, तो वो ऑपोजिट हो जाता है तुरंत। दीन व्यक्ति एन्जॉयमेंट में नहीं फंसता, वो कर ही नहीं सकता। अगर कोई समझ लो कि आपने कोई इतना बहुत बड़ा अपराध कर दिया है और उसके बाद आप बहुत सैड हो, डिप्रेस में हो, और तब आके कोई बोलेगा कि लो भैया दो चार रसगुल्ला खा लो, आपको मूड होगा क्या एंजॉय करने का? आप कहेंगे नहीं नहीं भैया क्या रसगुल्ला है। या कोई जोक्स चुटकुला सुनाएगा आपको, थोड़ा हंस ले, तो आपको कोई हंसी आएगी है ना, आप परेशान हो, आप थोड़ी हंस पाओगे। तो ये दीन व्यक्ति जो गिल्टी फीलिंग, दीन भावना, अपने आप को विनम्र मानता है, दीन में तो तुच्छ हूँ, तो दैन्य उसका सबसे पहला गुण है। निर्माण, निर्माण मोह, वो मोह से मुक्त हो जाता है। दैन्य आत्मनिवेदन, छह अंग को हम अगर संक्षिप्त में देखें तो आत्मनिवेदन का अर्थ है सब कुछ भगवान के शरण में, मन बुद्धि इंद्रियां सब भगवान के शरण में, भगवान के सेवा के उपयोग में यूज करना, सब कुछ। मुश्किल काम है लेकिन ये उपाय है शरणागति का। एवरीथिंग ऑफर टू कृष्ण, एवरीथिंग, क्या बोलते हैं, निजे सुख लागी किचु नहीं कर आर, अपने निजी सुख के लिए भी कुछ नहीं करना है। निजे सुख लागी किचु नहीं कर आर, भक्त विनोद कहे तब सुख सार। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं कि कृष्णा आपका जो सुख है वो मेरा अभी प्राइम गोल बन गया है, वो ही मुझे करना है, और देर इज नथिंग एल्स विच फॉर माय कंफर्ट, मेरे अपने कंफर्ट के लिए मुझे कुछ करने का इच्छा नहीं है अब, क्योंकि मैं अपने इच्छा, अपने कंफर्ट के लिए जितने भी प्रयास करता हूँ उसमें विफल हो जाता हूँ। आई एम नॉट सक्सेसफुल, वेन आई एम मेकिंग माई सेल्फ हैप्पी आई एम क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम्स, मैं और प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ। सो देयरफॉर आई स्टॉप थिंकिंग अबाउट माई कम्फर्ट, नाउ आई वॉन्ट टू मेक यू हैप्पी, दैट इज माई प्राइम गोल। तो आत्मनिवेदन, गोपतत्व वरण, भगवान हमारा पालन करते हैं और आप पालन नहीं करते, सरकार पालन नहीं कर रही, सोसाइटी पालन नहीं कर रहा है, हमारा पालन कर रहे हैं भगवान। अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, जो श्लोक है अवंती ब्राह्मण का, वो कहते हैं कि सारे संसार का पालन करने है तो मेरा पालन क्यों नहीं करेंगे भगवान, है ना, सारी सृष्टि का पालन भगवान करते हैं। सो उनकी कृपा से, उनके चरण का आश्रय लेने से मैं सारे भव संसार को, भव सागर को पार कर सकता हूँ, वो पालन करने वाले हैं। दैट इज द श्लोक, यू नो, संन्यास मंत्र फॉर ऑल वैष्णवास, दैट इज संन्यास मंत्र। सो गोपीजन अवश्य रक्षिबे, कृष्ण अवश्य रक्षा करेंगे, यू नो सारे संसार के भगवान किसी भी अवस्था में आपको छोड़ेंगे नहीं, वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे. इन एवरी सिचुएशन यू माइट बी द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू माइट बी द वर्स्ट सिनफुल, यू नो वर्स्ट ऑफेंडर इन द वर्ल्ड. आप संसार के कितने भी अधम व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी आपकी रक्षा कृष्ण करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण इन एनी सिचुएशन. यू नो ऐसा नहीं कि अब सॉरी अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट, यू नो ओनली पॉसिबल लाइक दुर्वा सामने गए थे भगवान की रक्षा करें, उसने तो भक्त का अपराध किया था. इसलिए द आइडिया इज कृष्ण विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ प्रॉब्लम्स. देन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य स्वीकार, जो भक्ति के अनुकूल कार्य है उसको ही स्वीकार करना और प्रतिकूल है उसका त्यागना, उसको त्याग करना. भक्ति के जो अनुकूल है, मेरी भक्ति में इससे सहायता होगी, चाहे वो मुझे कष्ट या सुखमय ना भी हो तभी भी उसका स्वीकार करना. और जो सुखमय कार्य है जैसे यू नो ज़्यादा सोने ज़्यादा सोते रहना, बहुत ज़्यादा खा लेना, या फिर इंद्रिय भोग करना, या मूवीज़ देखना, तो ये इंद्रियों को लाभ का सुखमय हो सकता है लेकिन भक्ति के लिए प्रतिकूल है. तो इस कार्य भले आपको अच्छा लगता हो लेकिन उसको त्यागना चाहिए, भले अच्छा लगता हो. यू माइट लाइक टू स्लीप लाइक आवर्स, आपको 8 घंटा 10 घंटा सोना अच्छा लगता हो सकता है, ठंडी में किसको अच्छा नहीं लगता, 8-10 घंटा सोना अच्छा लगता है, लेकिन अगर भक्ति के लिए वो प्रतिकूल है तो उसको त्यागना ही पड़ेगा. दैट इज शरणागति. ये हम प्रिंसिपल्स की चर्चा करते हैं लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट में जब तक प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करेंगे तब तक ये केवल शास्त्र में ही पड़ा रहेगा, ये ज्ञान हमारे व्यवहार में नहीं आएगा. और 90% डिवोटीज जिनका विकास नहीं हो रहा है, इसका मूल रीज़न यही है कि वो इसको थियोरेटिकली लेते हैं, प्रैक्टिकल में वो अपनी मनमानी करते हैं. प्रैक्टिकल व्यवहार में की बात आती है तब वो लोग शास्त्र का शरण नहीं लेते. तो ये 6 जो गुण है, निर्माण मोह जित संग दोष, संग दोष से मुक्त होना, भौतिकवादी व्यक्ति उत्साह संग अध्यात्म नित्या निरंतर भगवान की सेवा में लगा रहना, विनिवृत्त काम और काम, यही तो समस्या है सारी प्रॉब्लम. काम ही तो है सब कुछ, ये इसका मूल ही तो काम है सृष्टि का. विनिवृत्त काम द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व जो है लाभ हानि मान अपमान इत्यादि जो द्वंद्व है उससे मुक्त होकर सुख दुख के संगेही, सुख तथा दुख से मुक्त होकर के उस प्रकार के नाम से संज्ञा का अर्थ नाम गच्छन्त्य मूढ़ा, जो मूढ़ नहीं है, जो मोह रहित है, जो मूढ़ नहीं है, ऐसे व्यक्ति पदम अव्ययम उस उत्तम लोक को प्राप्त करता है. ऐसा इस श्लोक में भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा है. सो भक्तों की संगति होगी तब जाके हम इस प्रकार के गुणों को अनुकूल कर पाएंगे. भागवत में कहा है, कपिल मुनि कहते हैं माता देवहूति को कि अगर भौतिक आकर्षण से मुक्त होना है, आसक्तियों से मुक्त होना है, तो आसक्ति भक्तों के प्रति बढ़ानी चाहिए, तभी आप इस आसक्ति से मुक्त हो सकते हो. और स्पेशली उस भक्तों को, उस भक्त के प्रति आसक्ति बढ़ानी चाहिए जो भौतिक आसक्ति से पर है. और एक जगह प्रॉपर लेक्चर में बता रहे थे कि ये जो विनिवृत्त कामा शब्द है वो काम जो है वो लॉरिट ओवर मटेरियल नेचर, हमारी जो स्वामित्व बनने की जो भावना है, स्वामी बनने की भावना, ये इसका मूल है। चाहे फिर आप धन के स्वामी, स्त्री के स्वामी, धन का भोग करना, स्त्री का भोग करना, संपत्ति का भोग करना, ये स्वामी बनने की भावना के कारण हो रहा है। दैट इज यू वन इन दैट। सो हम उस स्थान पे जा सकते हैं जहाँ से फिर वापस नहीं आना पड़ता, और जो अमूढ़ है, जो मूढ़ नहीं है, जो इस फॉल्स एन्जॉयमेंट, आई मीन इट इज सो फॉल्स एन्जॉयमेंट। आप सोचिए फॉल्स एन्जॉयमेंट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि हमें लगता है कि वहाँ सुख है लेकिन होता नहीं उधर, ये हमारी समस्या है। इंद्रियों का प्रभाव ऐसा है हम पर कि इंद्रिय जन्य जो सुख है, स्पर्श सुख है, आँखों का सुख है, ऐसे में लगता है कि ये बड़ा अच्छा है, पैलेटेबल है, यू नो, बड़ा आकर्षित करने वाला है, लेकिन वो कवर्ड है, यू नो, मोहित हो, हमें मोहित कर लेता है। तो अमूड, जो मूड नहीं है, जो इससे आकर्षित नहीं होता है, वो व्यक्ति पदम अव्ययम को जा सकता है। और यही तो हमारी समस्या है कि हम भौतिक चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं। सो गच्छन्ते मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। हम उस पदम अव्यय पद को, भगवान के जो सनातन धाम है, हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। और वो धाम कैसा है पढ़िए आगे, वो धाम कैसा है?
वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते।
हाँ, मेरा धाम ऐसा नहीं कि आपको बार बार इधर ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक, आप ब्रह्म भुवन आर लोक का पुनरावर्तन हो जाए। वो पहले भगवान ने पहले बता दिया कि सारे 14 भुवन जो है, ब्रह्म लोक सब में पुनरावर्तन आता है, लेकिन मेरा धाम ऐसा नहीं है। यद गत्वा न निवर्तन्ते, इसमें जाने के बाद फिर वापस नहीं आना पड़ता, वो मेरा परम धाम है। तो ये धाम कैसा है? न तद भास्यते सूर्यो, जहाँ पर सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं, न शशांको चंद्र की आवश्यकता नहीं, न पावक अग्नि की भी आवश्यकता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी, और स्वयं प्रकाशित है। इतना डिटेल वर्णन नहीं है जैसे ब्रह्म संहिता में या श्रीमद् भागवत में बताया हो कि भगवान के धाम का वर्णन, लेकिन भगवान ने एक श्लोक में बता दिया कि इसका डिटेल इस प्रकार का धाम है मेरा।
भगवान की जो उदय लीला है तो उसमें भी मॉर्निंग होता है और वो नाइट होती है।
हाँ, इसका अर्थ ये भी है, दूसरा आचार्यों का मानना ऐसा है कि भगवान ये चीज़ बताई ना, तीन चीज़, सूर्य, शशांक और पावक, तीन चीज़। तो सूर्य के जो देवता है वो आँखों के देवता माने जाते हैं, अर्थात भगवान का जो धाम है वो चर्म चक्षु से देखा नहीं जा सकता, न सूर्यो, इस आँख से नहीं देख सकते हम, न तद भासते सूर्य, है ना। फिर शशांक चंद्र, वो मन का देवता है, तो इस भौतिक मन से उस धाम को हम समझ नहीं सकते, न शशांक को, न पावक अग्नि जो है उसका कनेक्शन होता है जीवा के साथ, वाणी के साथ, वही सेम डेमी गॉड है उसको हैंडल करने वाले, तो वाणी से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, भौतिक वाणी से उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए न शशांको न पावक, ये तीनों चीज के द्वारा, मीन इन अदर वर्ड्स, भौतिक चीज़ों के द्वारा आध्यात्मिक धाम का अनुभव नहीं हो सकता, यू नो। भगवान के धाम में सूर्य चंद्र वगैरह सब होते हैं, लेकिन उस भगवान का धाम उसके ऊपर आधारित नहीं है। भगवान स्वयं, भगवान के यहाँ सब कुछ चिदमय है, तो सब कुछ स्वयं प्रकाशित है, उनको किसी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं। सो दे आर ऑल सेल्फ एल्यूमिनेटेड, एवरीथिंग इज सेल्फ। डार्कनेस इज द प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, देर इज नो डार्कनेस इन कृष्णस स्पिरिचुअल वर्ल्ड। There is no requirement of it. समझ लो कि हमें सूर्य चंद्र और लाइट की आवश्यकता है इसलिए क्योंकि संसार काला है, डार्क, यू नो इट्स ऑल डार्क। द रियल फॉर्म ऑफ द यूनिवर्स इज डेंस डार्क। जो वास्तविक स्वरूप है सृष्टि का वह है डेंस डार्क, एकदम भयानक डेंस, यू नो। जैसे अभी मैं जगन्नाथपुरी में रात को 10 बजे आ रहा था वापस अपने कमरे में, तो मेरा जो रूम था वो ऐसी जगह पे था जहाँ पर समुंदर था एक साइड और बीच में रास्ता था, और यहाँ पर रूम था, बाजू में रूम था। तो कुछ समय तक तो समुंदर पर स्ट्रीट लाइट थी, लेकिन आगे समुंदर पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी, इट वॉज डार्क, लेस लाइट, बहुत होटल के लाइफ से वही। तो उस समय मैंने जानबूझकर ट्राई किया देखने के लिए समुंदर कैसा दिखता है। व्हाट यू कुड सी,
पूरा ब्लैक ही ब्लैक, दिखे नहीं,
कुछ दिखा,
कुछ भी नहीं दिखाई देता।
आपको क्षितिज दिखाई दिया कि समुंदर कहाँ तक आप देख सकते हो? वो उसका वास्तविक स्वरूप है डेंस डार्क। डेंस, यू नो डार्क, वी नो वन थिंग, डेंस डार्क इज मोर डार्क, एंड द रियल फॉर्म इज सुपर डेंस डार्क। इतना डेंस है, nothing is visible, that is the form of universe. उस अंधकार को दूर करने के लिए भगवान को सुदर्शन चक्र छोड़ना पड़ा था, क्योंकि वो अंधकार को काटना इंद्र के, अर्जुन के लिए संभव नहीं था। अर्जुन को लेके गए थे भगवान, अर्जुन को लेकर के वहां पर वैकुंठ लोक में, तो वहाँ पर उनको बीच में से अंधकार से निकलने का था, तो वो अंधकार इतना डेंस था कि आगे जा ही नहीं सकते, इतना डेंस अंधकार था, श्रीमद् भागवत में कथा थी। तो फिर भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र से उस अंधकार को काटा, तब जाके मार्ग निकला। इट्स सो डेंस, दिस इज द प्रॉब्लम विथ मटेरियल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये डार्कनेस नहीं है, दिस इज अवर प्रॉब्लम, डेंस डार्क। जैसे अगर समझ लो कि कोई नारियल है, कोकोनट, तो उसके भीतर अंधकार है, बाहर तो प्रकाश है। अभी उस अंधकार को निकालने के लिए अगर एक बल्ब डाल दिया उसके अंदर, दैट इज सन, वो सूर्य है, लेकिन उसकी आवश्यक, वो जब तक रहेगा तब तक उसका प्रकाश है, निकल गया तो
अंधकार,
तो वो उसका रियल फॉर्म है। सो इन द सेम वे आउटसाइड मटेरियल वर्ल्ड देर इज नो डार्कनेस, फुल लाइट एवरीवेयर। व्हाई? बिकॉज जो ब्रह्म ज्योति है वो स्वयं इतना प्रकाशमान है कि इतना डेंस डार्क में से अर्जुन निकल करके भगवान के पास पहुंचा, तो वहां पर भी समस्या, वो ब्रह्म ज्योति को फेस नहीं कर पा रहा था। ब्रह्म ज्योति इतनी प्रज्वलित थी, ब्राइट, कि अर्जुन उसको फेस नहीं कर पा रहा था, ही कुड नॉट मेंटेन इट। हजारों करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकाश हुए तो कैसा हो, वो कुड नॉट, वो आंखें खोलने से बंद हो जाती थी। होता ना कहीं पर आप सूर्य के सामने देखते हो तो आप देख नहीं पाते, यू नो, एक सूर्य के सामने यू कैन नॉट सी इट, आपके डायरेक्ट आइज से नहीं देख सकते उसको, तो इतने हजारों सूर्य तो कुड नॉट सी। अगेन कृष्ण मेड सम अरेंजमेंट फॉर अर्जुन, तो उसको ऐसी चक्षु दिए कि भाई तुम देख सको, वो विराट रूप में भी दिया था, विश्व रूप दिखाया उसमें भी, वो देख नहीं पाएगा इतना, वो वर्णन आता है, हजारों सूर्य एक साथ प्रकट होते, ऐसा. सो कृष्ण गेव हिम आइस. सो दिस इज द रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल प्लेनेट. भौतिक साधनों से उसको हम देख नहीं सकते.
तो मतलब ब्रह्मा जी भी सबसे पहले उत्पन्न हुए हुए तभी ऐसे ही होगा.
हाँ वो तो कुछ दिखा नहीं, उनको तप तप करने चले गए. We could not see. So, 6 श्लोक हुए हैं. So we can take another lecture and we can finish the whole chapter. Is that okay? क्योंकि अभी आगे वाला श्लोक बड़ा अच्छा है, मामा वांस टू डिवेल. ओके, इट विल टेक सम डिस्कशन. सो वी स्टॉप हियर.